محمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وقال وقبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين قرآن کریم کی جن دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے ان میں سے جو سیکنڈ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 یہ آیت ظہور امام کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے اور یوزولی میں اسی آیت پر پورا عشرہ پڑھا کرتا ہوں لیکن اب اگر عشرے کا وقت نہیں ہے تو آج کی جو ہماری آخری مجلس ہے جس میں ہم 1434 ہجرہ کے ایام عزا کے پہلے عشرے کا جو ہمارا سبجیکٹ یا ٹاپک تھا اسے مکمل کرنے والے کربلا سے امام زمانہ تک تو ایٹ لیسٹ ایک بار اس آیت کا ٹرانسلیشن کر کے اس کا میسج جو اتنا واضح اور کلیئر ہے کہ بغیر عشرہ پڑھے بھی آپ کی سمجھ میں آئے گا وہ میسج آپ تک پہنچا دیا جائے آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول بہت سارے ایسے لوگ جو ظہور سے پہلے جو اللہ کا ریپریزنٹیٹیو یا معصوم حجت خدا یا اس کا ری اپیئرنس ہوتا بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ظہور سے پہلے دعا مانگتے ہیں کہ جلدی سے وہ آ جائے لیکن ولما جاءہم جب وہ آ جاتا عرفوا بھی اور یہ لوگ اس کو پہچان بھی لیتے ہیں اور ریکوگنائز بھی کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا پھر بھی کفرو بھی اس کا انکار کرتے ہیں کفر اختیار کرتے ہیں فلانت اللہ علی الکافرین ایسے کافروں پہ اللہ کی لانت ہو کہ پہلے دعا کریں گے اور جب ان کی دعا قبول ہو کے اللہ کی حجت آئے گی تو یہی اس کے دشمن بن جائیں اب یہ آیت جو اگرچہ جب یہ نازل ہوئی تب یہ رسول خدا کے بارے میں تھی لیکن قرآن میں آ گئی ہے اور قرآن قیامت تک کے لیے ایک میسج ہے تو آج یہ آیت ہم میں سے بہت سو کے لیے اور یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو قرآن نے ایک مسٹیک یا ایک فالٹ یا ایک خرابی بتائی کہ پہلے دعا کرتے ہیں بعد میں انکار کر دیتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے اور یہ ریزن جو خاص اس آیت میں بات آئی ہے اس کا ریزن کیا ہے وائے ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں جو بیماری بھی آدمی کو ہوتی ہے اس کا کوئی ریزن ہوتا چاہے فزیکل بیماری ہو چاہے روحانی بیماری ہو اس کا ریزن کیا یہ ریزن سورہ جمعہ کی لاسٹ آیتوں سے ملائیں بلکہ لاسٹ آیت تو دو چیزیں اس میں آئی ہیں ایک چیز اس میں آئی ہے یہ تین چیزیں ان 25 کنڈیشن کو واضح کریں گی جس پر مجھے آج بہت جلدی جلدی بات کو کمپلیٹ کرنا ہے وہ جو 25 باتیں امام زمانہ بیعت لیں گے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ تیسری بات بھی بتانا ضروری ہے اس کا ریزن کیا और इसका रीजन बहुत ही शॉर्ट में इस्लामिक हिस्ट्री का एक छोटा सा वाकया, और ये वाकये को कोट कर रही है रसूल खुदा की एक बहुत ही काबिल एहतराम बीवी जनाब सफिया बिनते हई बिन अख्तब इब्ने अख्तब, हई इब्ने अख्तब रसूल खुदा की वाइफ है जनाब सफिया। इनके बाप का नाम था हई, वो मदीने का सरदार था यहूदियों का। मदीने में दो ग्रुप थे, एक काफिर एक यहूदी। यहूदियों के सरदार का नाम था हई, और बाद में जनाब सफिया की शादी हुई। अच्छा, अब ये बड़े लोग अपनी बेटियों की शादी किसमें करेंगे? बड़ा आदमी तो बड़े आदमी में ही शादी करेगा। वो जो इस्लाम में है कि हस्बैंड एंड वाइफ में मैच होना चाहिए, वो ज्यादा है रिलीजन के एतबार से कि अगर ये हिजाब करने वाली है तो इसके लिए कोई मुत्तकी और परहेजगार लड़का ढूंढो। और लड़का अगर बहुत ही पायस है तो उसके लिए फिर इतनी ही कोई रिलीजियस लड़की ढूंढो। मगर हमारे यहां जब मैच का लफ्ज आता है इस्लाम का तो हम उससे मुराद लेते हैं अपना जैसा पैसे वाला। मदीने के सरदार की बेटी है जनाब सफिया, अब इनका मैच कोई सरदार ही होगा। चुनाचे खैबर का सरदार, खैबर का जिहाद तो आपने सुना, मौलाए मुत्तकियान की जुल्फिकार ने खैबर को किस तरह से कामयाब किया वो आपने सुना। मगर ये भी आप याद रखिए कि खैबर के जिहाद में से हमारे सामने ये दो छोटे से मैसेजेस, मैसेज बहुत बड़े, मैं इस पे एक एक मजलिस पढ़ता हूं लेकिन आज ही नहीं। अब खैबर की बात आ गई जनाब सफिया की वजह से, तो इसलिए मैसेज खैबर के दो बहुत छोटे मैसेज नहीं, मैसेज बहुत बड़े हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। जब मौलाए कायनात खैबर को फतह करने, कामयाब करने या खैबर का जिहाद करने चले, कितना बड़ा खैबर का जिहाद है, मरहब जैसे पहलवान को अली ने तलवार के एक वार में दो टुकड़े किया था, लेकिन पैगंबर ने पहले रोक लिया अली को और एक जुमला कहा जो अली के लिए नहीं है, हमारे और आप यानी अली वालों के लिए। क्या है अली, तुम जा तो रहे हो और ये खैबर का इतना बड़ा सरदार है जिसने 40 दिन मुसलमानों को जलील किया। खैबर की जंग एक दिन में नहीं हुई, रोजाना इस्लाम की आर्मी जाती थी और शिकस्त खा के आती थी। जब कोई आदमी हार के आता है तो जलील होता है ना। अब ये 40 दिन या 20 दिन या 18 दिन, वो रिवायतें छोड़ दीजिए, लेकिन 40 दिन इसने मुसलमानों को जलील किया। लेकिन जा रहे हो तो जाते ही इससे जंग नहीं करना, पहले इसकी हिदायत का इंतजाम करना, पहले इसके सामने तबलीग करना, पहले इसके सामने इस्लाम की प्रीचिंग करना। अगर ये तुम्हारी बातों से इस्लाम में आ गया तो एक मिसगाइडेड आदमी को सीधे रास्ते पे लाना, पूरी दुनिया और सातों आसमानों में जो कुछ है उससे ज्यादा एक्सपेंसिव और कीमती है, उससे ज्यादा आदमी को सवाब और बेनिफिट मिलता। तबलीग, अमरे बिल मारूफ, दीन को फैलाना। मौला हुसैन आप करबला क्यों जा रहे हैं, ये सवाल मदीने में किया गया। हुसैन ने लिख के दिया उरीदु अन आमरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं करबला इसलिए जा रहा हूं कि अमरे बिल मारूफ पर नहीं अनिल मुनकर करूं। और एक क्या आप एक बात मैं और कह दूं, बहुत सारे लोग बहुत सारे बड़े बड़े प्लान बना के कहीं जाते हैं, 10 साल बाद हम पूछते हैं कि आप जब यहां पे आए थे तो बड़े एम्बिशियस थे, बड़े बड़े आपके प्लान थे, कामयाब हुए कि नहीं हुए। एक आदमी ने मसलन कहीं किसी नए इलाके में जाके बिजनेस एस्टेब्लिश किया, बड़ी 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 बातें कि मैं ये करूंगा और इतनी तरक्की और इतनी बरकत, हम 10 साल बाद पूछते हैं क्या हालत है, कामयाब हुए कि फेल हो गए। बड़ी हमारे यहां आजकल ऑर्गेनाइजेशन बनती, नहीं अभी बहुत जगह है, बहुत जगह, बहुत
जी।
अच्छा यार यबना रसूलिल्लाह, एक आदमी मसलन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि मैं चैरिटी का काम करूंगा इथोपिया में, हर एक के लिए मैं रोटी प्रोवाइड करूंगा, या पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल बनाऊंगा या इंडिया में एक ऑर्फेनेज बनाऊंगा। डोनेशन डोनेशन डोनेशन। हम 15 साल बाद पूछते हैं भाई आप अपने मकसद में कामयाब रहे कि वो बातें खाली बातें हो गई, आप कामयाब नहीं हुए, आपने अपना टारगेट अपना गोल अचीव किया कि नहीं किया। दो चीजें, पहले आदमी नियत करे, बहुत अच्छी बात। आप हुसैन ने लिख के दिया भाई आज 11 मुहर्रम है, आशूर के दिन हुसैन के जिहाद एक तरह से कंप्लीट हुआ, तो सैनक का जिहाद शुरू है ना, तो आका हुसैन आप कर्बला में आए क्यों थे भाई? हुसैन ने अपने पेन से राइटिंग लिखकर अपने छोटे भाई मोहम्मद हनफिया के पास रखवाई, उड़ी दो ना हमारा बिल मारूफ वाना अनिल मुनकर, मैं आया था अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने। जिहाद कंप्लीट हो गया कर्बला का, हमने पूछा आका हुसैन, अब हम तो नहीं पूछेंगे, एक नॉन मुस्लिम पूछ सकता है, एक नॉन बिलीवर पूछ सकता है, भाई हुसैन जो मिशन लेके चले कामयाब हुए कि कामयाब नहीं हुए? तो कयामत तक हर शबे जुमा हमने और आपने आई बियर विटनेस कह के गवाही दी, अशहदु अन्नका कद अकमत सलात व अतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहयत अनिल मुनकर। मौला जो आप अपना मिशन 28 रजब को लिख कर गए थे, मैं गवाही देता हूं कि आपने वही फरीजा अंजाम दिया, आप कामयाब रहे, अमर बिल मारूफ करते रहे, नहीं अनिल मुनकर। लेकिन ये कर्बला में बाद में मैसेज आया, पहले खैबर में आया था, आए अली मरब का कत्ल बहुत सवाब का काम है, इतना बड़ा एनिमी ऑफ इस्लाम मारा जाए, लेकिन कत्ल से बेहतर है उसे कन्वर्ट करो। और मरहब जैसे ताकतवर और स्ट्रांग दुश्मन के सामने भी तबलीग करना। हम और आप, हमारे दोस्त के घर में बर्थडे पार्टी है, हमें पता है कि मिक्स हराम गैदरिंग है। मिक्स गैदरिंग की दो किस्में, एक हराम और एक हलाल। म्यूजिक की दो किस्में, एक हराम और एक हलाल। अब हर चीज को हर मौके पर डिटेल में बताया नहीं जा सकता, मगर जब हम जल्दी में मिक्स गैदरिंग या म्यूजिक कहते हैं तो उससे मींस होता है हराम वाला। अब पता है कि हराम गैदरिंग है, जाना पड़ेगा। इस्लाम तो कहता है कि उल्टी बात है, बायकॉट भी करो और उसको अमर बिल मारूफ भी करो। हम तो अमर बिल मारूफ क्या करेंगे, बायकॉट तक नहीं कर सकते। पता चला है कि हम पता है कि हमारी बहन की बेटी की शादी में मिक्स गैदरिंग है हराम वाली। यहां तो लोगों को एक एक्सक्यूज भी मिल जाता है कि सिला रहमी भी इस्लाम में वाजिब है। कोई चीज वाजिब नहीं है जब अल्लाह के ऑर्डर से टकराए। ये मैदान कर्बला का पैगाम था, आए अल्लाह सबसे ग्रेट तू है, तेरे सामने सारी चीजें कुर्बान। भांजी भांजी की शादी तो छोड़े, जरूरत पड़े तो भांजी के गले में छुरी चलाने के लिए भी मामू को तैयार होना चाहिए। खैर, ये लफ्ज आपने नहीं सुना होगा, लफ्ज तो यही होता है कि बाप बेटे को सभा करे। तो चूंकि एग्जाम्पल आ रही थी कि लोग शादियों में जाते हैं तो ये एक्सक्यूज रहते हैं, लेकिन आपने ये बात बहुत सुनी है। खाली रिमाइंडर के तौर पर एक जुमला कह के मैं अपने टॉपिक में आता हूं। कहा, मरहब जैसा दुश्मन इस्लाम और अली जैसा पहलवान, एक सेकंड में मरहब का खातिमा होगा। लेकिन नहीं, मरहब का खातिमा नहीं करना, पहले कोशिश करना कि मरहब को अमर बिल मारूफ करके कन्वर्ट किया जाए। अगर एक औरत हमारी वजह से आपकी वजह से हिजाब कर ले, फुल फ्लेज भी ना करे, 5 मिनट के लिए कर ले, उसका सवाब दुनिया और आखिरत की तमाम दौलत से ज्यादा। यह खैबर का एक मैसेज, मैसेज नंबर 2। और ये मैं बहुत ही शॉर्ट पढ़ रहा हूं क्योंकि मैसेज नंबर 2 जब मैं डिटेल में इसकी स्टोरी पढ़ता हूं तो 1 घंटा लगता है, बहुत ही शॉर्ट में। अगर कोई मुझसे एक सवाल करे कि मौलाना रोजी कारोबार में बरकत और जॉब के प्रोटेक्शन के लिए इस्लाम में सबसे अच्छी दुआ कौन सी, दुआएं तो बहुत होंगी, बेस्ट वो 2 ही चीजें मेरे सामने, और दोनों का ताल्लुक एक ही फैमिली से है, एक है तस्बीह ज़हरा और एक है नमाज जाफर तैयब। रोजी के लिए इससे बेहतर ये दो अमल है, इससे बेहतर कोई अमल नहीं। और अगर आप इनकी हदीस सुनी कि भाई तस्बीह ज़हरा ऐसे ही हमें गिफ्ट नहीं मिला, उसके पीछे एक स्टोरी है, एक वाकया है। नमाज जाफर तैयार ऐसे ही हमें इमाम ने नहीं बताया कि चार रकत नमाज पढ़ो दो दो के पेयर में, पूरा एक वाकया है खैबर का कि खैबर के हर मुजाहिद को रसूलुल्लाह ने इतना गोल्ड और सिल्वर दिया और बाकी माले गनीमत। गोल्ड इतना था कि जब ये लोग मरे थे ना तो कुल्हाड़ी जिसे कहते हैं, एक्स जिससे दरख्त काटते हैं, उसके जरिए से उस गोल्ड को काट के बेटों में तकसीम किया गया। मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं, इतना गोल्ड। और फिर गुलाम, फिर कनीजे, फिर दिरहम, फिर दीनार, फिर जो जितना भी माल गनीमत पॉसिबल। जाफर तैयार को उसमें से कुछ ना मिला। कौन जाफर तैयार? अभी अभी आपने उनके पोतों के मसाइब सुने ऑन और मोहम्मद के हवाले से। कौन जाफर तैयार? कल आपने पुरसे वाली जियारत में औलाद जाफर तैयार को भी सलाम किया। अला वुल्दे जाफरिन व अकील, जाफर तैयार और अकील के बेटों को हमारा सलाम। और आका हुसैन ने अपने आशूर के खुतबे में कहा था कि हमजा हमारे खानदान से हैं, जाफर तैयार मेरा चचा है। तो जाफर तैयार को अल्लाह के रसूल ने एक दिरहम और दीनार नहीं दिया, लेकिन यह कहा कि इसके बदले में नमाज जाफर तैयार दे रहा हूं। तो लोग उलमा कहते हैं कि पैगंबर के जुमले का स्टाइल ये है कि गोल्ड और सिल्वर दिलामो दीनार एक तरफ, इससे ज्यादा तुम्हें मिलेगा अगर तुम नमाज जाफर तैयार पढ़ो। तो ये चूंकि बहुत फेमस नमाज, मगर एक चीज इसमें जरा सा लोग भूल जाते हैं। और अब माशाल्लाह मोमिनीन हज पर भी जा रहे हैं, उमरे पे भी जा रहे, करबला भी जा रहे, नजफ भी जा रहे, मस्जिद सहला भी जा रहे, मस्जिद कूफा भी जा रहे, मशहद भी जा रहे, कुम भी जा रहे, मस्जिद जमगरान भी जा रहे। जितनी भी जियारतें, हाईएस्ट रिकमेंडेशन जिस नमाज का आया है हाईएस्ट, वो नमाज जाफर तैयार। नमाज जाफर तैयार उसका एक फीचर यह है कि वो रोजी के लिए बेहतरीन नमाज है, और दूसरा ये कि आप खाने खुदा की जियारत पे जाएं, आप रोजे रसूल की जियारत पे जाएं, आप करबला जाएं, आप मशहद जाएं, वहां पे सबसे ज्यादा सवाब किस सुन्नत नमाज में है? नमाज जाफर तैयार। तो अब चूंकि करबला, आशूर, खानदान अहले बैत और खैबर का तस्किरा हो रहा है, ये नमाज जाफर तैयार रसूलुल्लाह ने जाफर तैयार को उस दिन दी थी जिस दिन खैबर की विक्ट्री हुई थी, और कहा था कि बाकी लोगों को माल गनीमत मिला है, तुम्हें मैं ये नमाज दे रहा हूं, नमाज दे जा। ये तो दो छोटी बातें खैबर के नाम से आ गई, लेकिन असल टॉपिक खैबर जब विक्ट्री हो गई और प्रिजनर्स ऑफ वॉर या कैदी लाए गए, उनमें जनाब सफिया भी थी। जनाब सफिया का शौहर खैबर का सरदार था, मरहब खैबर का सरदार नहीं है, वो खैबर की फौज का कमांडर इन चीफ है। लेकिन आखिर में पहले वो मारा गया, फिर उसका भाई मारा गया, फिर सरदार मारा गया, उसकी बेवा जनाब सफिया आई और अल्लाह के रसूल से उनकी शादी हुई। और जनाब सफिया उनकी खुशी से वो पहले से राजी थी, बल्कि ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब जनाब सफिया कैदी बना के लाई गई थी तो उनके चेहरे पर एक निशान या मार्क था। दुनिया के बाद मुल्कों में, स्पेशली वेस्ट में, मसलन स्कूल में बच्चे जाते हैं, चेहरे पर या बॉडी पे कोई चोट का निशान, फौरन टीचर पूछता है कि कोई होम या डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं। जनाब सफिया के चेहरे पर एक ऐसा निशान था जैसे अगर आप किसी को मारे। पैगंबर ने फौरन इंक्वायरी की कि ऐसा तो नहीं है कि इनको कैदी समझ के किसी ने जुल्म किया। पता चला कि नहीं, खैबर की विक्ट्री से एक रात पहले इनके शौहर ने इनको एक हाथ मारा था। वो खैबर का सरदार, ये मक्के के मदीने के सरदार की बेटी, और सिर्फ इसलिए कि जनाब सफिया ने پیغمبر اسلام سے اپنی شادی کا ذکر کر دیا تھا. تو یہ بات بہت لمبی ہو رہی ہے, میں کیا کروں. جیسے جیسے میں بات آگے کر رہا ہوں ویسے ویسے مومنین آتے جا رہے ہیں, تھوڑا سا مجھے روکنا پڑتا ہے اپنا ٹاپک. لیکن خیبر کے یہ دو بہت اہم پیغام, تو ایک طرف نماز جعفر تیار خیبر کا گفٹ, اور درہم و دینار اور سونے اور چاندی کے ایکویلنٹ امر بالمعروف کا میسج خیبر کا گفٹ ہے. مگر اب اصل واقعہ یہ ہے کہ جناب صفیہ جب پرزنر آف وار بن کے آئیں اور ایک طرح سے زخمی آئی, ایک انجری کا نشان تھا, اور پتا چلا کہ چونکہ انہوں نے رسول خدا سے شادی کی ایک خواہش ظاہر کی تھی تو ان کے شوہر نے ان کو مارا. تو اب جب وہ پیغمبر کے گھر آ گئی, نکاح ہو گیا, ام المومنین بنی, ہماری اور آپ کی ماں قرار پائی, تب ایک بات کسی نے ایک سوال کیا تھا جناب صفیہ سے کہ آپ کا باپ مدینے کا سردار یعنی رسول کا سب سے بدترین دشمن, اور آپ کا شوہر خیبر کا سردار یعنی رسول خدا کا سب سے بڑا دشمن. کبھی عورت کو میکہ برا ملتا ہے تو سسرال اچھی ملتی, یعنی میکے کے اندر گناہ ہے, شرابے ہیں, میوزک ہے, مکس گیدرنگ ہے, سسرال ذرا اچھی ملتی. کبھی میکہ بڑا اچھا ہوتا ہے, سسرال بہت خراب ملتی. آپ کے لیے تو دونوں خراب تھے, باپ بھی اسلام کا سب سے بڑا دشمن, شوہر بھی اسلام کا سب سے بڑا دشمن, اور آپ کے دل میں رسول کی محبت پیدا ہو گئی. آخر کیسے, ہر چیز کا کوئی ریزن کوئی لاجک ہوتی ہے نا. تو جناب صفیہ نے کہا کہ چھوٹا سا واقعہ, یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت 89 کا کانٹیکسٹ شان نزول. میں اپنے سبجیکٹ سے نہیں ہٹا ہوں, سورہ بقرہ کی آیت 89. وہ مومنین کرام جو بعد میں آئے اور جن کی وجہ سے ایک نوٹس آ گیا تھا کہ موو فارورڈ, تو ان کو بتا دوں کہ آج کی مجلس میں میں نے سورہ بقرہ کی آیت 89 سے کی تلاوت سے بات شروع کی, اور اس آیت 89 میں تیسرا اور آخری پوائنٹ بتایا گیا کہ لوگ رسول اور امام کے اپوزیشن میں کیوں جاتے ہیں. تو اب سنیے بیٹی کی گواہی, بیٹی وہ آئی وٹنس ہے جناب صفیہ. وہ کہتی ہیں کہ جب یہ رسول اللہ مکے سے مائگریشن کے بعد مدینے آئے, ہجرت مدینے آئے, تو سارے مدینے نے اللہ کے رسول کو ویلکم کہا. اگر آپ نے میسج فلم میں ہی وہ منظر دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے رسول خدا کا ویٹ کیا جا رہا تھا, اور روزانہ مدینے والے قبا کی مسجد کے قریب جا کے بیٹھتے تھے اور مکے کے راستے کو دیکھتے تھے, اب رسول آئے, اب رسول آئے, اب ڈیلی. تو جب پیغمبر مدینے میں انٹر ہو گئے اور پورے مدینے نے اس کو ایز اے عید سیلیبریٹ کیا, تو اب مدینے کے یہ نان مسلم نان بلیور ہیں جو رسول کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, اور مدینے میں یہودی بھی ہیں. تو میرا باپ تو اپنے قبیلے کا سردار. اب یہ بیٹی کہتی ہے کہ میرے چچا باپ کے چھوٹے بھائی وہ میرے باپ سے ملنے آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو سردار ہیں ہماری قوم کے. یہ جو مدینے میں ایک نیا واقعہ ہوا, ایک ایسا آدمی آیا اور ہماری بک میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں حضرت موسیٰ یا موسیٰ کے بعد ایک آخری نبی آئے گا, کہیں یہ وہی تو نہیں ہے, ہمیں جا کے اسے چیک کرنا چاہیے. اب بیٹی باپ اور چچا کی خدمت کر رہی ہے, ان کو چائے دے رہی ہوگی, پانی دے رہی ہوگی, جو بھی اس زمانے کے ریفریشمنٹ ہو, اور وہ دیکھ رہی ہے باپ اور چچا. اب یہ قبیلے کے سردار کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے قبیلے کو ہر طرح سے گائیڈ کرے. چنانچہ میرے بابا, اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں جناب صفیہ کے باپ کے ڈیٹیل حالات آپ کو بتاتا, کتنا بڑا سردار تھا. یہ کہا اپنے چھوٹے بھائی سے کہ بات تمہاری صحیح ہے, ساری قوم ہمارے پاس آ کے پوچھے گی, چنانچہ ہمیں چلنا چاہیے اور اس آدمی سے خود ہمیں فیس ٹو فیس ون ٹو ون میٹنگ کرنا چاہیے, جا کے اس کے چیک کرنا چاہیے. میرے باپ اور چچا چلے گئے بیٹی گھر میں. تھوڑی دیر کے بعد, آدھے گھنٹے کے بعد, ایک گھنٹے کے بعد رسول خدا سے یہ لوگ میٹنگ کر کے آئے. رسول کے گھر میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک کو ریسپیکٹ دی جاتی, چاہے آنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ پیغمبر کی بہت مشہور حدیث کہ تین ایسے ہیں کہ جن کی ریسپیکٹ ہر مسلمان پر واجب ہے, ولو کان کافرہ, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. नंबर एक तुम्हारे रिलेटिव्स सिले रहम, इसमें पेरेंट्स तो सबसे पहले, नंबर दो तुम्हारे नेबर, नंबर तीन तुम्हारे घर आने वाला तुम्हारा गेस्ट, मेहमान, पड़ोसी और रिश्तेदार, वलव काना काफिरा, काफिर ही क्यों ना हो, उसका एहतराम, उसकी इज्जत, उसकी रिस्पेक्ट। तो आप पैगंबर ने इन दोनों को भी, जो आगे चलकर इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन बनने वाले थे, आज तो पहला दिन था ना रसूल को मदीने में, आगे चल के ये दुश्मन बनने वाले थे, लेकिन पैगंबर ने फुल फ्लेज इनको रिस्पेक्ट दी, इन्होंने पैगंबर से कुछ सवालात किए। ये पूरी एक घंटे की मजलिस इस तरह होती है कि मैं वो सवाल भी पढ़ता हूं, उसका रिप्लाई जो रसूल ने दिया, वो सारी बातें, फिर ये आ गए। अब आके अपने कमरे में बैठे, अब मेरे चचा ने, अब बेटी फिर अपने चचा और बाप की खिदमत कर रही है, पानी ला रही है, रिफ्रेशमेंट ला रही है, और कह रही कि मेरे चचा ने मेरे बाबा से कहा कि आपने इससे मुलाकात की, आप सरदार, सरदार मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड सीजन पर्सन होता है अपनी कौम का, आपने क्या जज किया? मेरे बाप ने कहा खुदा की कसम ये सच्चा रसूल है और वैसा ही रसूल है जिसके बारे में मूसा अपनी तौरा में लिख गए, ये वही है सच्चा रसूल। अब बेटी सुन रही और कोई नहीं है घर में, तो मेरे चचा ने कहा कि फिर क्या आपका प्लान है, अब इसको माने और इसके हाथ पर बैत करें? कहा कि नहीं, ये हमें पता है कि सच्चा रसूल है, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसकी अपोजिशन में जाएंगे। चचा ने कहा वाय, अब बेटी का जुमला सुनी, और यहां पे इस आयत के हवाले से जो पॉइंट मुझे क्लियर करना था वो कंप्लीट हुआ। बाप कहता है कि मैं गया इसके पास, इस आने वाले मेहमान ने और रसूल ने, रसूल पूरे मदीने के मेहमान थे, मुझे पूरी रिस्पेक्ट दी, लेकिन मैंने दो तीन जरा ट्रिकी क्वेश्चन उससे किए, अब ये लफ्ज तो अच्छे नहीं लगते हैं, और ये जज किया कि अगर मैं इसके हाथ पे बैत करके कलमा पढ़ लूं तो क्या जो मेरा स्टेटस इस वक्त है ये बाकी रहेगा? मुझे लगा कि नहीं, जो हमारा स्टेटस है, मैं सरदार हूं अपनी कौम का। अब ये जुमला मेरा है, ये उसने नहीं कहा, लेकिन उसकी वर्डिंग के अंदर हिडन जो एक मैसेज होता है वो ये था कि अगर मैं अपनी कौम का सरदार इस रसूल की बायत करके इसका कलमा पढ़ू तब भी ये उस हबशी गुलाम बिलाल को मुझसे ज्यादा इज्जत देगा, क्योंकि इस्लाम में सरदारी या दौलत या पैसा या सेठ साहब नहीं चलता है, वहां तकवा चलता है, वहां पायटी चलती है, वहां इस्लाम के लिए आपने सेक्रीफाइस क्या किया। तो बिलाल को ज्यादा इज्जत मिलेगी, मुझे कम इज्जत मिलेगी, मुझे ये नहीं चाहिए। पता है कि ये हक है, पता है कि ये सच है, पता है ये मूसा वाला नबी है, लेकिन एक ईगो, दुनिया में हर आदमी के पास एक ईगो होता, जब ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि मैं इस कंडीशन पर इसकी बायत करूंगा, ये मुझे मेरा यही स्टेटस दे दे कि मैं अपनी कौम का सरदार हूं तो सरदार रहूं, और ये नहीं देगा। और ये है इब्ने अख्तुब, काफिर था, नॉन बिलीवर था, जहन्नमी था, लेकिन सरदार जो है ना वो बहरहाल एक सीजन और एक्सपीरियंस आदमी है, वो सही जज करता। अब ये जो ईगो प्रॉब्लम है, एरोगेंस, अच्छा मक्के में भी सेम प्रॉब्लम आ चुका था, मक्के के कुछ सरदारों ने रसूल खुदा से कांटेक्ट किया था और कहा था हम इस्लाम कबूल करने को तैयार, मगर प्रॉब्लम यह है कि हमसे पहले हमारे स्लेव और गुलाम इस्लाम कबूल कर चुके, वो हमसे सीनियर है, तुम उनको अपने करीब बिठाते हो, तो हमारी कंडीशन यह है कि जब हम आए तो हमारे गुलामों को बाहर कर देना, हम और वो एक साथ एक जगह बैठे, ये हमें बर्दाश्त नहीं। अब ये मक्के का प्रॉब्लम तो मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन कॉमन प्रॉब्लम था एरोगेंस, जब इमाम जमाना आएंगे तो हमारी कम्युनिटी से कितने ही लोग ऐसे होंगे जो अपने एरोगेंस की वजह से इमाम जमाना को नहीं मानेंगे। हर आदमी के पास एक चीज ऐसी होती है, किसी के पास दौलत, किसी का कुटुंब बहुत बड़ा, कोई वैसे ही अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है। वैसे में तो हरेक की ईगो को बड़ा किया जाता, कोई किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। वैसे यहां पे टॉलरेंस बहुत है, लेकिन गैरों के लिए, अपने लिए कोई टॉलरेंस नहीं। भाई ये हमारी सोशल लाइफ टूट रही है, जरा जरा सी बात पे हमारी बच्चियां डिवोर्स या तलाक मांग रही हैं, जरा जरा सी बात पे शौहर अपनी बीवियों को छोड़ रहे हैं, क्यों है? टॉलरेंस नहीं। हम सड़क पे चलने वाले एक अजनबी के सामने टॉलरेंट हैं, अपने ब्लड रिलेटिव के सामने टॉलरेंट नहीं। अब ये जो प्रॉब्लम बढ़ता चला जा रहा, बाहर का कोई आदमी कितनी ही बड़ी गलती करे, सॉरी करे, माफ कर देते, और अपना अपना सगा खूनी रिश्तेदार, छोटी सी कोई बात उसने चले कर ली, इंटेंशनली पर्पजली उसने हमें नुकसान पहुंचा दी, अब माफ करो उसे। नहीं, शबे कदर को भी लोग माफ नहीं करते हैं, आशूर के दिन भी एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं, करबला जाके भी माफ नहीं करते, हज करके भी माफ नहीं करते। ये ईगो, और ये ईगो और एरोगेंस ये रीजन होगा कि लोग इमाम जमाना को पहचान लेंगे जैसे जनाब सफिया के बाप हई ने पहचान लिया कि सच्चा रसूल है, लेकिन सिर्फ अपने एरोगेंस की वजह से पैगंबर की बात नहीं मानी। क्या हम इसे अगर रसूल मान लेंगे तो हमारी चेयर छिन जाएगी, हमारा स्टेटस खत्म हो जाएगा, हम सरदार को हमारे गुलाम के इक्वल कर दिया जाएगा, और यही इमाम करेंगे तो यही इमाम के साथ भी प्रॉब्लम है। अब आ जाइए इस आयत की इतनी तशरीह के बाद, जिसमें अमर बिल मारूफ का मैसेज भी आ गया, जो करबला का मैसेज, जिसके अंदर नमाज जाफर तैयार का रिमाइंडर भी आ गया, जो आज हमारे और आपके लिए दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रोजी वाला, उससे हमको प्रोटेक्ट करता। तो ये काम की बातें आई हैं, लेकिन जो असल मैसेज आया कबल वमिन कबल व कबल यस्तफ्तहून अला लजीना कफरू, ये आयत खास है इब्ने अख्तुब के बारे में आई है, लेकिन मैसेज इसका बहुत जर्नलाइज। ये लोग रसूल के आने से पहले दुआ करते थे रसूल आ जाए, फलम जा अरफू, जब वो आ गया जिसको ये पहचान भी गए, एटलीस्ट हई इब्ने अख्तुब ने पहचान ली, कफरू भी फिर भी मना किया, इंकार किया, निगलेक्ट किया, उसके खिलाफ मैदान में उतरा। अब आइए ये चीज उन दो चीजों के साथ मिलाइए, जो सूरह जुमा की आखिरी आयत मैंने पढ़ी थी, और अब इस वक्त पूरी आयत को पढ़ने का टाइम नहीं है, बाइजा राहो तिजारतन फनिन फजू इलेहा व तरकू का कायम, वहां दो बातें बताई गई, कहा कि माल को मर्चेंटाइज को बिजनेस ट्रांजेक्शन नजर आता है, रसूल को छोड़ के वहां चले जाते हैं, और हो सकता ये लोग कहते हैं कि भाई हम शराब खरीदने नहीं जा रहे, हम मसलन वीट खरीदने जा रहे हैं, वो तो इस्लाम में हलाल है ना। कुछ लोगों को हमारे यहां हलाल और हराम का लफ्ज इतना याद हो गया, उनको नहीं पता बहुत सारे हलाल कुछ कंडीशन के साथ हराम बन जाते हैं, बहुत सारे हराम कुछ सर्कमस्टांसेस में हलाल हो जाते हैं। अब ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक जिसको मैंने छेड़ दिया, खुलासा ये है कि हम तिजारत करने जा रहे हैं, कुछ शराब खरीदने को थोड़ी जा रहे हैं, और लहवा खास तौर पर ये दूसरी बात, पास टाइम, इंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, जो मैंने मुख्तलिफ ट्रांसलेशन पढ़े, कहा कि जब इस किस्म का कोई पास टाइम, कोई इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम, कोई अम्यूजमेंट का प्रोग्राम होता है, ये लोग तुझे छोड़ के चले जाते। अच्छा, इसकी स्टोरी तो आपको पता है ना, कि रसूलुल्लाह मदीने में रेसिंग के कंपटीशन कराते थे, ऊंट घोड़े, वो जगह भी आज तक मदीने में है, अब खत्म होने वाली, जो नया मदीने की मस्जिद का एक्सटेंशन है उसमें वो पूरी जगह मस्जिद के अंदर आ जाएगी। खैर, रसूल खुदा ये कंपटीशन कराते, लेकिन यहूदियों का तरीका था कि इधर नमाज शुरू हुई उधर उन्होंने घोड़े दौड़ाए। अब एक मोमिन कह सकता कि भाई मैं एक हलाल कंपटीशन देखने जा रहा हूं जो रसूल खुदा अपनी सुपरविजन में कराते थे, नमाज का तो बहुत टाइम है ना, जोहर की नमाज अगर 12:15 पे आती है तो 5 बजे तक उसका टाइम है, बाद में पढ़ लूंगा, कजा तो नहीं कर रहा हूं। ऐसे लोग भी हैं जो रसूल और इमाम के सामने भी तौजील मसाइल खोल के मसाला चलाते हैं। तो खैर, अब ये एक बहुत सेंसेटिव टॉपिक है, बहुत टाइम मेरे पास कम है, तो मैं बात करूं खेल तमाशा लहवो लाभ, ये इंटरटेनमेंट की, हलाल इंटरटेनमेंट की महफिल है, हलाल हलाल अम्यूजमेंट का, इसकी वजह से ये रसूल तुझे छोड़ के जाते हैं। अच्छा, जो जमाने का इमाम आएगा वो रसूल को सुपरसीड नहीं करेगा, वो रसूल से ज्यादा अफजल नहीं होगा, आने वाला इमाम कितना ही बड़ा क्यों ना है स्टेटस में रसूल के बाद, तो जिस दुनिया ने रसूल को छोड़ दिया, जैसा कि एक हदीस और भी है लेकिन उसको मैं बहुत शॉर्ट पढ़ रहा हूं क्योंकि वो यहां वालों के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एक हदीस और, पूरी वर्डिंग पढ़ने का टाइम नहीं है, بہت مختصر. کسی نے پوچھا تھا امام سے کہ مولا جب آپ کا بیٹا آخری امام آئے گا تو کیا ہم اس کی آرمی کو جوائن کر سکیں گے؟ اب یہ سوال ڈفرنٹ لوگوں نے ڈفرنٹ اوکیزن پہ کیا اور معصومین نے اس کا ڈفرنٹ ریپلائی دیا ہر آدمی کے حساب سے. امام نے کہا دیکھو اب یہ ورڈنگ میری ہے, یہ میں کہہ دوں کہ حدیث جو ہے ورڈنگ میری ہے, جس کا میسج ہے وہ امام کا تھا. امام نے کہا دیکھو آنے والا امام میرا بیٹا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں.